हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की, श्री बरसाना धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की। प्रेम से बोलो जय। श्री लाडली लाल की, श्री कृष्ण बलराम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। श्री बरसाना धाम में आप लोग बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। ये बरसाने का जो इतिहास है बहुत ही दिव्य है। बरसाना धाम में कई संतों का और कई राजाओं का और कई देवताओं का सहभाग है इसको बनाने में। तो आज हम आपको इसका इतिहास बताएंगे। आप सब जानते हैं कि जो सृष्टि है उसका निर्माण भगवान विष्णु के द्वारा हुआ है, और भगवान विष्णु के नाभि से एक कमल खिलता है और वो कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो उनको चार मुख होते हैं। हमारे वाले यूनिवर्स में ब्रह्मा जी को चार मुख होते हैं, और जब उनका जन्म होता है तो वो पूरा अंधकार होता है, उनको बहुत संभ्रम होता है। संभ्रम यानी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण है उसका। तो वो कमल दल का जो राज्य है उसको कहते हैं ब्रह्मलोक, वो सबसे ऊपर है, और उसके नीचे बाकी सारे लोक हैं। बाकी नीचे छह स्वर्ग लोक हैं, एक पृथ्वी लोक है और छह पाताल लोक हैं। नोटबुक लाया क्या? तो ब्रह्मा लोक जो है वो सबसे ऊपर है, सातवां स्वर्ग लोक। उसके नीचे छह स्वर्ग लोक हैं, सेवन सिक्स हेवनली प्लैनेट्स प्लस वन ब्रह्मा लोक, सेवन टोटल हेवनली प्लैनेट्स। उसके बीच में पृथ्वी लोक है, पृथ्वी मंडल, और उसके नीचे है छह नरक लोक कह सकते हैं उसको, लोअर प्लैनेट्स। तो ये 14 लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स। तो सारे वो घूम के आते हैं और ढूंढते हैं कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है। फिर जाकर वापस अपने लोक में, ब्रह्मा लोक में ध्यान लगाते हैं। तो उस ध्यान में श्री विष्णु भगवान उनको उपदेश देते हैं। उस उपदेश को कहा गया है चतुश्लोकी भागवतम। हमारे श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में चार श्लोक आते हैं, जो चार श्लोक विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करते हैं। और जैसे ही वो चार श्लोक ब्रह्मा जी सुनते हैं, उनको पूरा ज्ञान हो जाता है, ही बिकम्स फुल्ली रियलाइज्ड। उनके ड्यूटी के बारे में, उनके अस्तित्व के बारे में, उनकी सेवा के बारे में, सारे जीवन का जो अर्थ है, सारे जो लोगों का मीनिंग है, उनको क्या क्या करना है, सब उनको समझ में आता है। ब्रह्मा जी का ड्यूटी क्या है? ब्रह्मा जी का ड्यूटी ये है, ब्रह्मा जी हमारे यूनिवर्स के नंबर वन सिटीजन हैं। जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ अमेरिका इज़ अ प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ बॉम्बे इज़ वो मेयर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से ये पूरा यूनिवर्स जो है, इसके प्रथम नागरिक कौन है? श्री ब्रह्मा जी। और उनका काम यह है कि वो विष्णु से, जो भगवान हैं, उनके तरफ से 24 एलिमेंट्स ले लेते हैं, तत्व कहते हैं उसको, 24 एलिमेंट्स ही टेक्स फ्रॉम विष्णु। और वो 24 तत्वों को एकत्र करके वो हमारे सब शरीर बनाते हैं। जितने हमारे शरीर हैं वो उन 24 तत्वों से बने हुए हैं, और वो 24 तत्वों से बने हुए न केवल हमारे शरीर हैं, लेकिन वो पंछी का शरीर है, या पेड़ का शरीर है, या मछली का शरीर है, या जानवरों का शरीर है, जितने भी स्पीशीज योनियां भगवान ने बनाई हैं, वो सबका निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। और इतना उनका कार्य जो है सुपर फाइन कार्य है कि हमारे मनुष्य योनि में भी एक जीव दूसरे जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, है ना? आप सभी एक ही एज के लड़कियां हो, सब अलग दिखाई पड़ती है, सबके माता पिता अलग दिखते हैं। जितने भी देश हैं, जितने भी राज्य हैं, जितने भी भाषा बोलने वाले गांव हैं, सब जगह जितने मनुष्य हैं सब अलग दिखते हैं। यहाँ तक कि ट्विन्स जो होते हैं ना, ट्विन्स, वो भी अलग दिखते हैं। एक ही गर्भ में जिनका जन्म हुआ है, एक माता के समान दिखता है, एक पिता के समान दिखता है। इतना उनका कार्य सुपर फाइन है। तो ये 24 तत्व जो है उसको कहते हैं, उसको इंजीनियरिंग करते हैं वो, और उसका शरीर बनाते हैं कॉम्बिनेशन से, और उसमें 84 लाख ऑफ स्पीशीज बनाते हैं, 84 लाख योनि बनाते हैं। नौ लक्ष योनि तो जल के अंदर है, 9 लाख स्पीशीज, 9 लाख प्रकार के जीव जो हैं वो केवल जल के अंदर, समुद्र के अंदर है, हमने देखा भी नहीं अब तक। उसमें ऑक्टोपस है, उसमें शार्क है, उसमें वेल है, उसमें छोटी मछली है, बड़ी मछली है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, क्या क्या है उसके अंदर, स्पाइडर है, सांप है, समुद्र सांप, फिर कितने सारे लाख जो है वो दोनों रहने वाले, पानी में भी रहने वाले हैं और जल में भी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फीबियंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टॉर्टोइज, फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ऊपर भी जीते नीचे भी जीते, दोनों तरफ जीते हैं। फिर केवल जमीन पर जीने वाले, मतलब घोड़ा, बैल, भैंसा और सारे कुत्ता, शेर, इतने सारे प्राणी। फिर पेड़ भी हैं, फिर आकाश में उड़ने वाले भी हैं, खग कहते हैं उसको, खग यानी कि आकाश में उड़ने वाले। फिर पेड़ हैं, उसके बाद देवता हैं, उसके बाद राक्षस हैं, उसके बाद मनुष्य हैं, कितने सारे योनियाँ हैं, सबका निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये सेवा है। अब उनका पोजीशन क्या है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द होल यूनिवर्स। क्योंकि ये 4 श्लोक सुनने के बाद में उनको पूरा ज्ञान होता है, अपनी सेवा का ज्ञान भी होता है और भगवान के बारे में पूरा ज्ञान होता है। तो समझ जाते हैं कि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, यूनिवर्स क्या है। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं, एक ही यूनिवर्स नहीं है, वो अकेले ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, और बहुत सारे ब्रह्मा के ऊपर बहुत सारे सर होते हैं। हमारे ब्रह्मा के ऊपर 4 सर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे ब्रह्मा के ऊपर 4 ही सर होते हैं, जितनी दिशा है उतने सर ब्रह्मा के सर पर होते हैं, कंधे पर होते हैं, यहाँ तक कि लाखों लाखों सर भी होते हैं ब्रह्मा जी के सर कंधे पर। और ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्स भी यहाँ पर भगवान ने बना के रखे, मेनी मेनी सोलर सिस्टम्स आर देयर। एनीवे वो तो बहुत टेक्निकल नॉलेज है। तो ब्रह्मा जी को ये भी नॉलेज होता है कि इस जीवन में अगर हमको परिपूर्णता प्राप्त करनी है, परफेक्शन चाहिए, तो भगवान की भक्ति ज़रूरी है। और भगवान की भक्ति अगर चाहिए तो भगवान के भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त होनी चाहिए। जब वो प्राप्त होगी तो भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति प्राप्त होगी तो भगवान प्राप्त होंगे। इसलिए वो सबसे पहले युग के पहले 60,000 साल तपस्या करते हैं। कितने साल तपस्या करते हैं? 60,000 ईयर्स। 4 युग का मिलके कल्प होता है। 4 युग कौन से होते हैं? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों युगों से मिलके कितने साल होते हैं? 43,20,000 ईयर्स। कलयुग के कितने साल होते हैं? 4,32,000 ईयर्स। 4,32,000 साल से कलयुग बनता है। इसके 10 गुना कितना होता है? 43,20,000 ईयर्स। इसके 2 गुना द्वापर युग होता है, उसके 3 गुना त्रेता युग होता है, उसके 4 गुना सत्ययुग होता है। ये बहुत सिंपल है समझने के लिए और याद रखने के लिए। सत्ययुग का जितना कालावधि है उससे दुगना द्वापर युग का है, उसके 3 गुना त्रेता युग का है, उसके 4 गुना किसका है? सत्ययुग का है। ओके? तो सत्ययुग की शुरुआत में ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या करते हैं। किसके लिए करते हैं तपस्या? कि उन्हें भगवान के भक्तों की और भगवान के भक्तों की कृपा मिले। लेकिन 60,000 साल तपस्या करके भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? तपस्या बंद करके अपनी सेवा में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान की तपस्या के भी आगे क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, सेवा। बोलो ना, बोलो, शर्माते क्यों? मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इज सर्विस। तपस्या किया कुछ प्राप्ति करने के लिए, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला तो कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने सेवा करने चले गए। वैसे हमारे लिए भी हम लोग सुबह यात्रा करते हैं और दोपहर में सेवा करते हैं, लेकिन समझो आपको कॉल आया सेवा में, बीच में, कि यात्रा छोड़ के आ जाओ, वो तो पेशेंट ज़्यादा बीमार है, तो आपको यात्रा छोड़ के सेवा में आना चाहिए, क्योंकि सर्विस जो है वो हमारा भगवान का नंबर वन का कनेक्शन है। जितना हमारा भगवान का नाम जप करना भगवान का कनेक्शन है, उतना ही सेवा भी हमारा भगवान का कनेक्शन है। भगवान का नाम पुकारने से हम भगवान से कांटेक्ट कर सकते हैं तुरंत, इंस्टेंट कांटेक्ट। भगवान को पुकारने से हम भगवान को मिल सकते हैं तुरंत। उसी तरह से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा करने से हम तुरंत भगवान से जुड़ सकते हैं, वी कैन कनेक्ट विथ लॉर्ड। तो 60,000 कोई छोटी बात नहीं होती है, कोई 6 घंटा नहीं है, 6 दिन नहीं है। हाँ, हम लोग एक दिन अभी कल एकादशी का उपवास करेंगे, कितना वेट करते हैं, द्वादशी कब आएगी, कब उपवास छूटेगा, कब खाने को मिलेगा, कितना घंटा चलेगा उपवास कितना सोचते रहते हम लोग। ये तो 15 दिन में एक बार आता है एकादशी, महीने में 2 बार आता है, साल में 26 बार आता है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। और वो भी केला खाने को मिलता है, हाँ खिचड़ी खाने को मिलता है, कुट्टू का लड्डू खाने को मिलता है, सब खाने को मिलता है, फिर भी तकलीफ होती है। और ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या किया बिना कुछ खाए पिए, केवल सांस लेते थे बस, और कंटिन्यूस ध्यान लगाते थे। आप सोचो कि देवता लोग कैसे महान होते हैं, इसलिए उनको बड़ी बड़ी सेवा मिलती है। जो लोग महान होते हैं वो बड़ी सेवा करते हैं, जो लोगों की योग्यता बहुत कम होती है वो छोटी छोटी सेवा करते हैं। जब हमारी योग्यता बढ़ती है भक्ति से हमारी, तो हमें बड़ी बड़ी सेवा मिलती है। तो ब्रह्मा जी को क्या सेवा दिया है, ये पूरा वर्ल्ड का जितना क्रिएशन है उसको निर्माण करना है, उनको जितने जीव हैं उनको बनाना है, जितनी सृष्टि है उसको बनानी है। तो 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उनको भगवान की तरफ से, तो सेवा में लगे। और फिर सत्ययुग के अंत में दोबारा 60,000 साल तपस्या किया, यही इच्छा से कि हमको भगवान के और भगवान के भक्तों के चरणों की धूल प्राप्त हो जाए। टोटल कितना हो गया, 60 और 60, 120,000 साल हो गए। 120,000 साल तपस्या करने के बाद में भगवान ने दर्शन दिया उनको, प्रसन्न हो गए भगवान कि कितनी परिश्रम कर रहे हैं ब्रह्मा जी, इतने बड़े पोस्ट पर हैं वो, उन्होंने भगवान ने रखा उनको पोस्ट पर, लेकिन तपस्या कितनी बड़ी कर रहे हैं। 120,000 साल तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं, बोलो क्या चाहते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी इच्छा है कि आप और आपके भक्तगण और आपकी गोपियां और आपके फ्रेंड्स सब मिलकर मेरे ऊपर लीला करें और उनके सबके चरणों की धूल मेरे सर पे आ जाए। तो भगवान कहते हैं ब्रज में चले जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रज तो बड़ा है बहुत, कहाँ जाऊं। भगवान कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा। वृषभानुपुर यानी कौन सा जगह हो गया, हाँ बरसाना। आप लोगों को मालूम है, आप शर्माते क्यों, बोलते क्यों नहीं। तो कहते हैं वृषभानुपुर चले जाओ और वहां पर पर्वत बनो। अभी आप जानते हो पर्वत बनने का मतलब क्या होता है, पर्वत बनना मतलब पत्थर बनना, पत्थर बनना मतलब नो एक्टिविटी, ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, पड़े रहना है। और भगवान तो जाएंगे लीला करने के लिए, गोपियाँ जाएंगी, ग्वाल बाल जाएंगे, सखा जाएंगे, सब लीला करेंगे, लेकिन कुत्ता बिल्ली भी जाएंगे और पेशाब भी करेंगे और टट्टी भी करेंगे, गंदगी भी करेंगे, थूकेंगे उसके ऊपर। हम लोग जाते हैं ना अपने गंदे पाँव लेकर जाते हैं कि नहीं पर्वत के ऊपर, इसीलिए हम जब सुबह जाते हैं तो पहले सीढ़ी को चढ़ने के पहले क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारे सृष्टि के सबसे बड़े महान व्यक्तित्व जो हैं पर्सनैलिटी वहाँ पर पत्थर बन के खड़े हैं आपके लिए, हमारे लिए, इतनी बड़ी सेवा है उनकी। अगर हम लोगों को समझाओ, कोई बोलेंगे कोई हेड नर्स है उसको बोलेंगे कि आज से आप हेड नर्स नहीं रहोगे, आपसे आप सबसे जूनियर नर्स बनोगे, तो कितना तकलीफ होगा आपको। आपने इतना मेहनत से 10 साल पहले सबसे जूनियर नर्स के रूप में काम शुरू किया था और धीरे धीरे फिर सीनियर नर्स, फिर नाइट सुपरवाइजर, फिर ऐसा करते करते हेड नर्स बने आप। एक दिन आपको आते हैं सर, बोलते हैं कि अभी कल से आप जूनियर नर्स वापस, तो कितना तकलीफ होगा आपको, अरे कैसे करूंगा मैं इतना बड़ा पद पे काम किया है। तो ये तो सुप्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूनिवर्स के, और उनको कहा जा रहा है अभी जाओ बरसाने में जाके पत्थर बनो। उन्होंने कहा था अरे मेरे सर पे तो आपकी धूल चाहिए थी, हाँ हाँ जाओ पत्थर बनो। तो ब्रह्मा जी कितने नम्र हैं देखो आप, इतने बड़े होने पर भी नम्र है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिनके पास बहुत धन है, बहुत शक्ति है, बहुत अधिकार है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत सुंदरता है, बहुत ज्ञान है, बहुत शक्ति है, और इतना सब होने के बाद भी जो नम्र रहता है उसे भगवान की कृपा मानते हैं। इट इज अंडरस्टूड दैट मर्सी ऑफ द लॉर्ड इज देयर। इफ समबडी इज हम्बल इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, ब्यूटिफुल, नॉलेजेबल, पावरफुल, अथॉरिटेटिव, स्टिल इज हम्बल इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, दैट मीन्स ही हैज मर्सी ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि बिना भगवान की कृपा से इतना सब होने पर भी हम लोग नम्र नहीं बन सकते हैं। इतना सब होने पर कोई नम्र है इसका मतलब भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के बिना हम लोग इतना नम्र नहीं बन सकते हैं। तो ब्रह्मा जी तो भगवान की कृपा के पूर्ण पात्र हैं, इसलिए हम जैसे पतित फॉलन कंडीशन सोल्स लाइक अस यू नो सिनफुल, हम भी उन पर चढ़ते हैं, उन पर चढ़ के ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसलिए हमेशा हमको उस पर्वत पर चढ़ते समय प्रणाम करना चाहिए कि ब्रह्मा जी हमें माफ़ करना, हम अपने आनंद के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, अपना इंद्रियों का भोग करने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, मजा करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमको श्री जी का दर्शन करना है इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हम कोई बेफजूल की बातें करने वहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई फिल्मी गाने गाने वहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई मजा करने के लिए ड्रामा देखने के लिए कोई फिल्म देखने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम केवल श्री जी के बारे में बात करने के लिए, श्री जी की पूजा करने के लिए, श्री जी का भजन गाने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए, उसको प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ऊपर जाकर कभी भी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि आप किस पर चल रहे हो, हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि हम ब्रह्मा जी के सर पर चल रहे हैं। इसीलिए इस पर्वत को ब्रह्माचल कहा गया है, और ब्रह्माचल चार शिखर वाला है। ब्रह्मा जी के कितने सर हैं हमारे, चार सर हैं, इसलिए ये पर्वत भी चार शिखर वाले हैं। एक शिखर है भानुगढ़, जिसमें राधा रानी का घर था, वृषभानु बाबा और कीर्ति माता का घर था वहाँ पर, राधा रानी का और उसके भाई श्रीदा माँ का और उसकी बहन अनंग मंजरी का निवास था वहाँ पर, उनका घर था, इसलिए आज वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। उसके आगे का गढ़ कौन सा है, दानगढ़, जिस पर दान बिहारी जी का मंदिर है और कुशल बिहारी का मंदिर भी है। उसके आगे जाएंगे तो एक सफ़ेद रंग का मंदिर दिखाया ना आपको सुबह आपने, अब दूसरों को दिखाऊंगा अगले बैच को। उसके आगे जो सफ़ेद मंदिर है वो विलासगढ़ है, वहाँ पर विलास मंदिर है, विलास बिहारी जी रहते हैं वहाँ पर। और लास्ट का जो आज हम लोगों ने कथा सुना वहाँ पर बैठ के, वो कौन सा मंदिर है, मान मंदिर, वहाँ पर राधा मान बिहारी लाल विराजते हैं। और वो जो विलासगढ़ है सॉरी जो दानगढ़ है वही आगे बढ़ता है, और उसमें मोरकुटी है जहाँ पर भगवान मोर बनकर नाचे थे, इसलिए उसका नाम मोरकुटी है। ऐसे सुंदर चार पहाड़ों का, चार चोटियों का ये पर्वत ब्रह्माचल के रूप में वहाँ पर विराजमान है, इसलिए बरसाने को कहते हैं बरसाना। बरसाने के कई नाम हैं, एक नाम है बरसाना, मतलब यहाँ पर हमेशा रस बरसते रहता है, प्रेम का रस और भक्ति का रस यहाँ पर हमेशा बरसते रहता है। दूसरा इसका नाम है बृहत सैनु, बृहत यानी बड़ा, और सियानु यानी पर्वत के चोटियां, यानी कि पीक्स ऑफ माउंटेन्स। पर्वत की चोटियां, जिसकी पर्वत की चोटियां बहुत सुंदर हैं, इसको बृहत सियानु कहते हैं, मतलब बरसाना। और एक नाम है उसका वर सियानु, यानी कि यहां पर एक सुंदर सा वर आता है जिसका नाम कृष्ण है, श्याम सुंदर, इसलिए उसका नाम वर्षयानु है। ऐसे सुंदर बहुत बहुत नाम है, वृषभानु पूर्व नाम है, वृषभानु गृह नाम है, जयदेव गोस्वामी, शांडिल्य मुनि, ऐसे अनेक आचार्य लोग हैं, इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उन्होंने अनेक श्लोक भी लिखे हैं, और भगवान स्वयं उसको वृषभानुपुर कहते हैं। वो कहते हैं वृषभानुपुरम गत्वा, वृषभानु जहाँ विराजते हैं वहाँ पर चले जाओ। तो ऐसा एक इतिहास है इसका, हाँ ब्रह्मा जी का। और ये पूरे ब्रज में, अब ब्रज किसको कहते हैं, ब्रज उसको कहते हैं जहां पर भगवान की गाय निर्भय होकर विहार करती हैं, उनको कोई भय नहीं है, आनंद होकर, आनंद से भरकर अपने थनों में दूध भरते हुए, उस दूध को प्रेम से टपकते हुए जमीन पर वो विहार करती हैं, उनको कोई भय नहीं है। आज की गाय जो है भयभीत है, क्योंकि कब पता नहीं कोई आएगा उठा के ले जाएगा, काटेगा उनको मांस खाने के लिए। कितने दुष्ट हो गए मनुष्य, है ना। हमारी माता हमको दूध पिलाती है, लेकिन गाय जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती है और हमको और आपको भी दूध पिलाती है, है ना। हमारी माता से भी बड़ी माता है वो, क्योंकि वो अपने बच्चे को भी देती है और आप सबको भी देती है। और जब दूध देना बंद करती है तो गोबर और गोमूत्र देते रहती है, जिसके द्वारा भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं हम लोग। ऐसा कहते हैं कि गाय कभी भी इंसान पर बोझ नहीं बनती है, गाय हमेशा देती है, कभी भी लेती नहीं, और जितना आपसे लेती है उसे कई गुना आपको देती है। लेकिन लोग सब भूल गए अभी, इसलिए गाय को तुरंत दूध कम हो गया, बंद भी नहीं हुआ अब तक, थोड़ा 40 लीटर का 38 हो गया, 36 हो गया तो तुरंत काटने को भेज देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रज वो जमीन है, ये भूमि है ब्रज भूमि, जहाँ पर गाय जो है वो बड़े निर्भय होकर विहार करती है आनंद से और अनंत मात्रा में दूध देती है। तो ये ब्रज में तीन बड़े पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं ब्रज में, बहुत दिव्य पर्वत हैं। जिसको जिसको नींद आ रही है उसको खड़े रहना है, क्योंकि तो आपको नींद आएगी तो मुझे भी आएगी, फिर कथा समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्णा। तो ब्रज में तीन महान पर्वत हैं और वो तीनों महान पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। बड़ी बात है ये, बहुत समझने वाली। तो इसकी एक सुंदर कहानी है जो मुझे लोकेश्वरी बाद में बताने वाली है, मैं भी बताऊंगा बाद में, आप मुझे बताएंगे पूरी कहानी। हाँ, ये कहानी ऐसी है कि एक बार स्वर्ग लोक में चर्चा हो रही थी देवताओं के बीच में कि सबसे बड़ी सती कौन है, हु इज द मोस्ट चेस्ट वुमन। तो ब्रह्मा की पत्नी और विष्णु की पत्नी और शंकर की पत्नी को लगा कि हाँ तो हम ही तो है, और कौन है हमारे से ज्यादा। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, तुम तीनों महान सती हो, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, लेकिन सबसे महान सती जो है पृथ्वी पर है वो अत्रि मुनि की पत्नी है, जिसका नाम अनसुया है। उसका नाम का मीनिंग क्या है, अन असुया, जिसके मन में कोई असुया नहीं है, मतलब नो एनवी, फ्री फ्रॉम एनवी। और वो अत्रि मुनि की पत्नी है, वो सबसे महान सती है। तो ये तीन पत्नियों को, यानी कि सरस्वती और लक्ष्मी और पार्वती, तीनों को ऐसा अच्छा लगा नहीं कि अरे हम लोग को लगा कि हम लोग ही बेस्ट हैं और ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पति कह रहे हैं कि आप लोग ने बेस्ट नहीं है, वो बेस्ट हैं। तो वो कहते हैं नहीं, उसकी परीक्षा होनी चाहिए, उसकी परीक्षा होगी तब हम लोग मानेंगे कि हमसे श्रेष्ठ है वो, आप लोग जाओ उनकी परीक्षा करो। तो तीनों पति जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आते हैं और ऋषि बनकर आते हैं, और ऋषि बनकर आते हैं और अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और कहते हैं भवती भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। तब वो पति की सेवा करती रहती है अत्रि मुनि की। कुछ देर बाद बाहर आती है और कहती है लीजिए भोजन कीजिए, आइए बैठिए। तो वो कहते हैं, बहुत सुनिए ध्यान से, वो कहते हैं कि हम आपके हाथ से भोजन करेंगे, एक शर्त पर करेंगे कि आप निर्वस्त्र होकर हमको भोजन कराएंगे। यू विल बी रिमूविंग ऑल योर क्लोथ्स एंड नेकेड यू विल फीड अस। तो वो समझ जाती है कि इसके अंदर कुछ रहस्य है। तो बहुत ही वो होशियार होती है, बहुत पतिव्रता होती है और बहुत भक्त होती है भगवान की। वो अपने अंदर जाती है घर के और अपने पति के कमंडल है ना, जो पूजा का पानी होता है उसके अंदर मंत्र बोल के पानी बना दे, सुबह सुबह हम लोग ऐसा मुद्रा बनाकर उसको जल बनाते हैं, उसके भगवान की पूजा में लगाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, फिर बहुत सारे मंत्र बोलते हैं और वो बचता है वो तीर्थ के रूप में सबको देते हैं। वो कमंडल वहाँ पड़ा था, वो कमंडल लेके आती है वो और उसका पानी जो है ये तीनों पर फेंकती है। उसके प्रतिव्रता बल से, मतलब बिकॉज ऑफ हर चैस्टिटी, द पावर ऑफ चैस्टिटी, क्या होता है ये तीनों देवता जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये बालक बन जाते हैं, छोटे से बालक बन जाते हैं, वो भी नंगे बिना वस्त्र वाले। फिर वो कहती है बैठ जाओ खाने के लिए, और अपने वस्त्र भी उतार कर उनको भोजन कराती है। अभी बालक के सामने कोई संकोच नहीं होता है, कोई चेस्टिटी भंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये तीनों बालक जो है उसके हाथ से भोजन करते हैं और उसके बाद में बालक ही रहते हैं और इतने रमते हैं उनके घर पे, इतने रमते हैं कि वो माता के समान उसके साथ में अपना लीला चालू करते हैं। बहुत समय होता है अत्रि मुनि के घर पे अनसुया के प्रेम के आश्रय में, वात्सल्य में, माता की तरह ये तीनों बालक खेल रहे हैं उधर आंगन में। बहुत समय बीतता है तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती सोचती है, अरे हमारे पत्नी पति लोग कहाँ गए, टेस्ट बहुत लंबा चल रहा है जल्दी खत्म होना चाहिए था, तो बहुत टाइम लग रहा है। तो वो खुद आ गई पृथ्वी पर, उनको पता था कहाँ टेस्ट करने गए हैं। तो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और अनसुया जी को स्वयं पूछते हैं कि हमारे पति किधर हैं। राधे राधे। तो अनसुया कहती है वो देखो खेल रहे हैं। तो तीन बालक जो है छोटे से उधर आंगन में खेल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अरे हमें हमारे पति चाहिए। तो फिर वो कमंडल से पानी लेती हैं, पति के कमंडल से, और फिर अपने इन तीन बालकों पर डालते हैं। तो फिर तीन बालक जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, दोबारा अपने पुराने स्वरूप में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं अभी जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नी को बोलते हैं अभी क्या लगा आपको, सही में पतिव्रता श्रेष्ठ कौन है। तो सब लोग जाकर अनसुया को प्रणाम करते हैं और जब भी वो जाने लगते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हमको जाने का दिल नहीं कर रहा है, हमने इतनी देर तक आपके माता का प्रेम हमने अनुभव किया, तो हमको आपसे वरदान चाहिए कि हम आपके बालक बनना चाहते हैं, एक्चुअल बालक बनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा तथास्तु आप बालक बनोगे मेरे। तो विष्णु जी बालक बने उनके, उनका नाम क्या है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जो है वो विष्णु उनके बालक बने हैं। फिर शंकर जी उनके बालक बने, कौन बने हैं, दुर्वासा मुनि, और मुझे अगले तीसरे व्यक्ति का नाम याद नहीं है। दुर्वासा मुनि शंकर जी के अंश बने हैं, उनके अनसुया के पुत्र बने हैं। लेकिन अनसुया ने उनको एक शाप भी दिया, उन्होंने वरदान मांगा, वरदान दे दिया लेकिन शाप दिया, क्योंकि तुम लोगों ने यहां पर आके मुझे टेस्ट करने का प्रयास किया, मेरे सतीत्व का, मेरे चेस्टिटी का परीक्षा किया आपने, मैं आपको शाप देती हूं कि आप तीनों पत्थर बन जाओगे। और वो तीनों फिर ब्रज में आके पत्थर बने हैं, मतलब पर्वत बने हैं। और स्वयं त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र ने अपने हाथों से उनको यहां स्थापित किया है, विष्णु जी को गोवर्धन के रूप में स्थापित किया है। और शंकर जी को कहां स्थापन किया है, हाँ थोड़ा जोर से बोलो ना, नंदगांव में नंदीश्वर के रूप में स्थापन किया है, जहां पर वो पर्वत बने हैं शंकर भगवान और उसके ऊपर नंद का घर बनाया गया है। नंद भगवान जो है, नंद महाराज, यशोदा माई, कृष्ण बलराम, उनका घर उसके ऊपर है, उस पर्वत के ऊपर। वो पर्वत जो है स्वयं शिव भगवान है और गोवर्धन जी विष्णु है स्वयं। इस तरह से यहाँ पर तीन पर्वत है, उसको कहते हैं त्रिक, TRIK, त्रिक। जो त्रिदेव थे वो त्रिक बन गए, स्वयं प्रभु रामचंद्र के अवतार में प्रभु ने उनको स्थापन किया। ये दूसरा इतिहास है यहाँ का। तीसरा इतिहास ये है कि एक दिलीप राजा थे, दिलीप राजा, वो सूर्य वंश के राजा थे। दो वंश है मेन, हाँ, जिसमें जन्म होता है हमारा सबका, एक है चंद्रवंश, एक है सूर्यवंश। तो सूर्यवंश में राधा जी का जन्म हुआ है और चंद्रवंश में कृष्ण का जन्म हुआ है, ये फैमिली ट्रेडिशन है। तो सूर्यवंश में दिलीप राजा हुए और दिलीप राजा बड़े भगवान के भक्त थे और गौ माता के भक्त थे। और अभी कलयुग में कोई स्वर्ग में जाता नहीं अपने आप, नोबडी कैन गो टू हेवनली प्लैनेट्स। और कलयुग में स्वर्ग के देवता भी नीचे नहीं आते, क्योंकि कलयुग इतना गिरा हुआ है, इतना पापी युग है, हम सब लोग इतने गिरे हुए हैं कि ऐसे युग में कलयुग के शुरुआत के बाद में कोई देवता लोग नीचे नहीं आते। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सत्ययुग में सब देवता लोग आते जाते रहते हैं, यज्ञ करेंगे तो आएंगे, अपनी आहुति स्वीकार करेंगे और चले जाएंगे, दे विल एक्सेप्ट देयर ओब्लेशंस एंड दे गो बैक। बट कलयुग में कोई नीचे नहीं आता है, कई अदृश्य रूप में आते हैं खाली बस। तो ये स्वर्ग में गए थे अपने लोक में, तो उधर से लौट के आते समय वो कामधेनु को मतलब गाय को प्रणाम करना भूल गए, तो कामधेनु उनको शाप दे दिया कि तू पुत्र प्राप्ति के लिए जा रहा है, तुझे पुत्र प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन वो शाप उसको सुना नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय इंद्र का जो आसन क्या कहते हैं उसको, वाहन है ना, वाहन ऐरावत हाथी, वो डांस कर रहा था। अभी कल मैंने कथा क्यों नहीं किया इधर, क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक चल रही थी, अभी वो म्यूजिक में मेरी कथा सुनाई पड़ेगी क्या आपको, इसलिए मैंने यहाँ की कथा कैंसिल करके वहाँ कथा की। बैकग्राउंड में म्यूजिक नहीं बजना चाहिए तो कथा बराबर नहीं होती। उस तरह से बैकग्राउंड में इंद्र का हाथी नृत्य कर रहा था, तो इसलिए कामधेनु ने शाप दिया लेकिन उसको सुनाई नहीं पड़ा। तो पृथ्वी पर आया, बहुत देर तो राज्य किया उसने, बहुत देर के बाद भी उसको पुत्र नहीं हुआ, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ, अरे क्या बात है, कहाँ पाप हुआ हमारे हाथ से। तो उस समय उसने अपने गुरु को पूछा, वशिष्ठ मुनि को, कि महाराज जी क्या हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान किया और बताया कि अरे तुमने तो गाय का अपराध किया है, वो गाय का शाप है, तुमने वो गए थे स्वर्ग में तभी प्रणाम नहीं किया गाय को, तो अरे गलती हो गया, अभी क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उनकी उस गाय की जो पुत्री है नंदिनी, नंदिनी गाय, वो भी यहाँ पर है मेरे पास है, उसकी सेवा करो आप। तो राजा दिलीप ने बहुत प्रेम से उस गाय की सेवा किया, और उस सेवा जब होने के बाद में नंदिनी गाय प्रसन्न हो गई, तो उसने सोचा कि अभी मैं इसको वरदान देने के पहले इसकी परीक्षा लेती हूँ। तो वो सिंह का रूप बनाकर आई और एक गाय भी भेजा साथ में, एक गाय यहाँ से भेजा और खुद सिंह बन के आई, और वो सिंह बनकर वो गाय को खाने के लिए जा रही थी। तो राजा ने गाय को बचाने का प्रयास किया, तो सिंह ने बोला, राजा गाय मेरा खाना है, तुमको देना जरूरी है। नहीं नहीं बोलते, गाय मेरे शरण में आई है और मैं राजा हूँ और गाय की रक्षा करना मेरा फर्ज है, आप गाय को नहीं मार सकते। तो सिंह बोलता है कि फिर अगर तुम गाय मुझे देने को तैयार नहीं हो तो तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो बोला ठीक है, अगर मैं गाय की रक्षा नहीं कर सकता हूं उससे अच्छा मरना अच्छा है, और अगर गाय को मार दूं मतलब आप खा जाएंगे और मैं जीवित रहूं, ऐसे जीवन का मतलब क्या है। ऐसे राजा दिलीप बोल रहे हैं गाय को, मतलब सिंह को बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, राजा का कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है कि गाय की रक्षा करें। जब गाय संकट में आती है तो अपनी जान की बाजी देकर गाय को बचाना चाहिए। हम लोग अपने आप को बचाकर गाय को मार देते हैं और गाय का मांस खुद खाते हैं, गाय माता है हमारी। तो सिंह बोलता है, अरे एक सिंपल गाय के लिए तुम राजा हो, इतने बड़े राजा हो, इतनी पृथ्वी का राज्य करते हो, मनुष्य हो, तुम तपस्या कर सकते हो, भजन कर सकते हो, भक्ति कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, तुम्हारा जीवन कितना कीमती है, तुम्हारे इतने कीमती जीवन के सामने गाय का जीवन क्या है, तो क्या है, एक गाय मरेगी तो बहुत सारे गाय है। बोलता नहीं, गाय कितनी भी साधारण क्यों न हो, गाय गाय ही होती है, उसके अंदर सारे देवताओं का निवास होता है, वो पूजनीय होती है, शी इज वर्शिपेबल। तो आपको लगता होगा गाय बहुत सिंपल है, उसको क्या है, लेकिन मेरे लिए गाय पूजनीय है, मैं गाय को मरने नहीं दूंगा, खुद मर जाऊंगा, खा लो मुझे आप। तो सिंह बोलता है ओके, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सिंह जो है वो आकाश में छलांग लगाता है, ये जंप्स इन द स्काई, और राजा जो है सर झुकाकर, अभी सिंह अपने पर अटैक करेगा ना, गला काटेगा मेरा, गला झुकाकर खड़ा रहता है ये सोचकर कि अभी सिंह उड़ कूद कर आएगा, मेरे सर पे आघात करेगा और मुझे काट डालेगा। लेकिन सिंह जैसे आकाश में कूदता है तो वो फूल की माला बनकर राजा के गले में गिर जाता है, और सामने जो नंदिनी गाय प्रकट हो जाती है जो सिंह के रूप में आई थी, आकाश से गले का कटने के वजह से बदले में फूलों की माला आती है और गले में गिरती है, और नंदिनी गाय कहती है, राजा तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, प्रसन्न हूँ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र जो है बहुत यशस्वी और बहुत ख्यातनाम होगा, ही विल बिकम अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। हु इज दैट पर्सन, राजा रघु। हम लोग कहते हैं ना, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाई प्रवचन जाई, इस रघु के कुल में प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ है। तो रघुकुल किसको कहते हैं, रघु नाम का एक महान पराक्रमी और धर्मशील राजा था, उसका जन्म दिलीप से हुआ है, नंदिनी गाय के आशीर्वाद की वजह से, और ये पूरा वंश जो है वो गाय का भक्त है। फिर आगे जाकर इसी वंश में अभयकर्ण राजा भी हुए हैं। और जब शत्रुघ्न जो है ना, राम जी का भाई, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चार भाई थे ना वो, तो शत्रुघ्न का राज्य है यहाँ पर, कहाँ पर है, महावन में। उधर एक वन है मधुवन नाम का, मधुवन में लवणासुर को शत्रुघ्न ने मारा था। लवणासुर नाम का एक भयंकर राक्षस था, वो दिन में हजारों जानवरों को मार के खाता था त्रिशूल से लटका कर, सारे जानवर को मारकर त्रिशूल पे हैंग करता था और सारे लटका कर घर लेके आके सबको खाता था। उसका हाहाकार मच गया था। तो प्रभु रामचंद्र ने शत्रुघ्न को यहाँ भेज दिया था और मधुवन में शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारा था। उस समय शत्रुघ्न अभयकर्ण को यहाँ पर लेके आते हैं, जो दिलीप राजा के वंश के राजा हैं, और अभयकर्ण भी बहुत गाय के भक्त हैं। और अभयकर्ण के बाद में इसी वंश में रसंग राजा हुए हैं, रसंग राजा। और रसंग राजा ने ये बरसाना राज्य यहाँ पर बसाया, और उसी रसंग राजा के वंश में वृषभानु महाराज का जन्म होता है। चार बड़े भाई, चार छोटे भाई और वृषभानु महाराज, नौ भाइयों का जन्म जो है वो इसी वंश में होता है। और ऐसे कहा गया है कि वृषभानु महाराज सूर्य के अवतार थे, वॉज द इनकार्नेशन ऑफ सन गॉड। ये हुई दिलीप राजा की कथा। इसमें गाय का महात्म्य भी आता है कि कैसे गाय के लिए राजा लोग, पुराने राजा लोग जो थे, अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। अरे अभिमन्यु का पुत्र था ना परीक्षित महाराज, अर्जुन का पोता, ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन, तो राजा बने तो रात को गश्त लगाते थे भेष बदल कर। तो क्या देखते हैं कि एक बैल जो है उसके तीन पैर एक काले आदमी ने काट दिए हैं। एक काला आदमी जो राजा का वस्त्र पहन के, मुकुट पहन के खड़ा है, हाथ में तलवार है उसके, और उसने बैल के तीन पैर काट दिए हैं और एक पैर पे बल कांप रहे हैं। अब बैल धर्म का प्रतीक है, उसके चार पैर चार चीजों के प्रतीक हैं। लिखो, बैल के चार पैर दे आर फोर पिलर्स ऑफ रिलीजन। एक उनका पैर, एक है पैर है वो है मर्सी, दया, करुणा, कंपैशन, एक पैर है। दूसरा पैर है सत्य, ट्रुथ। तीसरा पैर है पवित्रता, यानी कि क्लेनलीनेस, शुचि, पवित्र। और चौथा पैर क्या है, तपस्या। क्या बताया मैंने आपको, एक है मर्सी, एक है सत्य, तीसरा पवित्रता और चौथा तपस्या। ये चार दो तत्व हैं, द फोर प्रिंसिपल्स, ये धर्म का आधार है। चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, बुद्ध हो, कोई भी इंसान, जब तक आप हो और आप भगवान को मानते हो और आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको ये चार प्रिंसिपल की आवश्यकता है। आपके जीवन में सत्य होना चाहिए, आपके जीवन में दया होनी चाहिए, आपके जीवन में तपस्या होनी चाहिए और आपके जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। यू हैव टू बी प्योर, यू हैव टू बी मर्सीफुल, यू हैव टू बी फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड यू हैव टू बी ट्रूथफुल। ये धर्म को बढ़ाने वाले तत्व हैं। और बैल के चार पैर, इसके सिग्निफिकेंस ऑफ फोर लेग्स आर दिस। और ये चार जो बैल के पैर हैं वो नष्ट किससे होते हैं बताइए? जब हम किसी भी निष्पाप प्राणी को मारकर खाते हैं या मार देते हैं उसको, हिंसा करते हैं, वायलेंस, या किसी को मारते नहीं है लेकिन बुरा भला बोलते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पीक टू यू वेरी हार्श वर्ड्स, आई डोंट टच यू, बट आई स्पीक टू यू इन अ वेरी वेरी हार्श मैनर, वो आपको मारने से भी अधिक पेनफुल होता है, होता है ना? दैट इज कॉल्ड वायलेंस, हिंसा। एक होती है शरीर की हिंसा, एक होती है मन की हिंसा, भावना की हिंसा भी होती है। इतना भावना की हिंसा होती है कि आप जन्म भर रोते रहेंगे कि मुझे आपने 10 साल पहले ऐसे क्यों बोला था। आप अभी दुख करेंगे कि व्हाई यू सेड लाइक दिस टू मी। लोग भूलते नहीं है, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले पति ने या देवर ने कुछ बोला था बहू को, वो अभी भी रोती है उसको याद करके। उसको कहते हैं इमोशनल वायलेंस। तो कहा गया है कि वायलेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, ना शरीर से होना चाहिए ना भावना से होना चाहिए, और किसी भी जीव को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए मारना नहीं चाहिए। अगर वो आपको अटैक कर रहा है तो रक्षा के लिए आप उसको मार सकते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, उसकी चमड़ी चाहिए आपको जूता बनाने के लिए, मोजा बनाने के लिए और पाइप पर्स बनाने के लिए, उसका मांस चाहिए खाने के लिए, उसका चर्बी चाहिए शैम्पू बनाने के लिए, वो सब के लिए निष्पाप प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है, मर्सी नष्ट हो जाता है और भगवान का दिया हुआ प्रॉपर्टी जब हम जुए में लगाते हैं तो सत्य नष्ट हो जाता है। ट्रूथफुलनेस इज लॉस्ट व्हेन यू स्क्वांडर द वेल्थ ऑफ गॉड गिवन बाय गॉड टू यू टू यूज इन हिज सर्विस, उससे ट्रूथ नष्ट हो जाता है। और तपस्या जो है ना, तपस्या, तपस्या का मतलब क्या होता है, जो हम रोज नियम का पालन करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, है ना, एकादशी का उपवास करते हैं, सुबह जल्दी उठ के दर्शन करने जाते हैं, ठंड में, इतना आसान काम नहीं है, सोने को अच्छा लगेगा आपको लेकिन फिर भी नींद त्याग करके आप स्नान करके भागते हो, पहाड़ चढ़ते हो, दर्शन करते हो, भीड़ में प्रार्थना करते हो, जप करते हो, फिर मांस नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, फिर बहुत सारे नियम पालन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कथा सुनते हैं भगवान की, भगवान की किताब में क्या क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वो सब समझते हैं, पढ़ते हैं उसको, फिर कुछ दिन फास्टिंग करते हैं, है ना, ये सारा नियम पालन करना होता है ना। ये नियम पालन करने से भगवान की प्राप्ति होने की संभावना है, आगे जाकर भगवान मिल सकते हैं। और नियम पालन कौन कर सकता है बताइए, केवल मनुष्य कर सकता है। किसी प्राणी को देखा है आपने उपवास करते हुए, हाँ, गाय बैल बकरी कुत्ता, बोला आज एकादशी उपवास कर रहे हैं, ऐसा होता है, कभी नहीं होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ओनली मेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तपस्या, नियम का पालन केवल मनुष्य कर सकता है। अगर मनुष्य होकर आप लोग तपस्या नहीं करते हो तो आप मनुष्य ही नहीं हो। मनुष्य का मतलब तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र का आदि, शबदेव भगवान ने बताया अपने पुत्रों को कि मनुष्य का मतलब है तपस्या करना चाहिए, और तपस्या करके नियम का पालन करके भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो तपस्या करने की शक्ति मनुष्य ने, मनुष्य को भगवान ने सबको दी है। तो तपस्या करने की जो एक है ना पिलर, बैल का एक पैर तपस्या है, वो नष्ट कैसे होता है, जब हम नशा करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, और कोई ब्राउन शुगर, कोई धतूरा, कोई चरस, गांजा, अफीम जब पीते हैं तो हमारी तपस्या करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, हमारे अंदर से तपस्या नष्ट हो जाती है। क्या बचा लास्ट, लास्ट क्या बचा, यस मैडम, लास्ट क्या बचा, फोर्थ पिलर, पवित्रता, प्यूरिटी, हृदय की प्यूरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गंदा हृदय लेकर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हम लोग। जिस हृदय के अंदर बहुत सारा लस्ट है, एंगर है, एनवी है, ग्रीड है, हाँ, लोभ है, हिंद क्या कहते हैं उसको, असूया यानी कि द्वेष है किसी के प्रति, एनवी, काम वासना है, शरीर को भोगने की इच्छा है, चोरी करने की इच्छा है, आपके पास जो है मुझे चाहिए, चोरी करने की इच्छा है, उसको लूटने की इच्छा है, दूसरे का अधिकार छीनने की इच्छा है, दूसरों के अहित, मतलब जिसके लिए वो अच्छा नहीं वो करके खुद का हित करने की इच्छा है ना। वी वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, ये सब हृदय की गंदगियाँ हैं। हृदय की गंदगी लेकर भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। जैसे मंदिर में चप्पल पहन कर जा सकते नहीं है, वैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध हृदय होना चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना भगवान की भक्ति उसमें बनेगी, कल्टिवेट होगी, बहुत ज़रूरी है समझना है। हृदय की प्योरिटी बहुत आवश्यक है। हम सब इतना नियम पालन को करते हैं, मांसाहार नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते हैं, नशा नहीं करते हैं, हृदय को पवित्र करने के लिए। लेकिन केवल नियम पालन करने से हृदय पवित्र नहीं होता है, नियम पालन करने के बाद में जब भगवान का नाम लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हृदय पवित्र होता है। तो हृदय की पवित्रता नष्ट कैसे होती है, बाइबल में भी बताया गया है, हाउ द प्योरिटी इज लॉस्ट, टेल मी, यस टिसेमा, What is the activity? When you do that activity, your purity is lost. That is called adultery. Adultery के बारे में कितना लिखा है बाइबल में? जब कोई व्यभिचार करता है तो उसका पवित्र नष्ट हो जाता है. द प्योरिटी ऑफ द हार्ट इज लॉस्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी नियम नहीं पालन करेंगे, गंदा काम करेंगे, चोरी करेंगे, एनवी करेंगे, तो भी पवित्र नष्ट होती है. लेकिन ये जो व्यभिचार है, एडल्ट्री है, ये सबसे पावरफुल एक्टिविटी है. जो करेंगे तो आपने इतना जीवन में इतना पवित्र कमाया, आपने अर्न किया, वो सब लॉस हो जाता है. तो ये धर्म के चार पैर हैं, इसलिए हम लोग ये चार नियम पालन करते हैं. व्यभिचार नहीं करते हैं. व्यभिचार का मतलब क्या होता है? विवाह के बाहर, शादी के पहले और शादी के बाद. शादी के बाद केवल पत्नी के साथ रहना है आपको. शादी के बाहर किसके साथ संबंध नहीं करना है. शादी के पहले भी नहीं करना है, शादी के बाद भी नहीं करना है. ओनली विथ वाइफ, ओनली विथ हस्बैंड, नो अदर पर्सन इन लाइफ. भावना से भी नहीं. ऐसे नहीं कि शरीर से पति के साथ रह रहे हैं और मन किसी और के साथ में है. इवन दैट इज कॉल्ड एडल्ट्री. हाँ, मन की एडल्ट्री है वो. मतलब दिल से किसी को और चाह रहे हैं और मन शरीर से आप किसी घर में रह रहे हैं. इट्स कॉल्ड पैरामोर. यू नो पैरामोर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, विवाह बाह्य संबंध बोलते हैं उसको. वो करने से हमारा भक्ति जो है नष्ट हो जाता है. यू कैंट परफॉर्म भक्ति, नो डिवोशन. तो परीक्षित महाराज भी, मैंने सब क्यों बताया आपको, तो वे काला सा राजा का वस्त्र पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ, तलवार लेकर हाथ में, उसने बैल के तीन पैर काट दिए थे और एक पैर पे बल लड़खड़ा रहा था. तो परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाला और उसको मारने का प्रयास किया. तो वो क्या किया उसने, तुरंत एक आइडिया किया उसने. राजा का तलवार देखकर तुरंत राजा के चरणों में गिर गया. वो बोला, महाराज मैं भी आपकी प्रजा हूं, आई एम ऑल्सो योर किन्समैन, मैं आई एम ऑल्सो योर सिटीजन, मुझे भी जगह दे दो, मुझे भी रहना है आपके पास. तो राजा उसको मार नहीं सका, बिकॉज सरेंडर टू हिम. तो राजा ने कहा, तुमको रहना है मेरे राज्य में, जाओ, जिधर भी मांसाहार होता है, हिंसा होती है, उधर जाओ. जिधर व्यभिचार होता है वहां जाओ. जिधर लोग नशा कर रहे हैं उधर जाओ. जिधर लोग व्यभिचार कर रहे हैं वहां पर जाओ. जुआ खेल रहे हैं वहां पर जाओ. तो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति कली था. कली, स्वयं कली, कलियुग का वाला कली. तो कली है ना, पूरे यूनिवर्स में घूम के आता है और उसको राजा परीक्षित के राज्य में किधर भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, ऐसा स्थान नहीं मिलता है जहां ये चार में से कोई कार्य होता हो. कैन यू इमेजिन दिस? नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल यूनिवर्स वेयर एनीबॉडी इज ईटिंग मीट, डूइंग गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन और इलिसिट सेक्स. एक भी जगह नहीं मिलती है. लौट के आता है वो राजा, आपने बताया जगह, लेकिन ऐसा जगह दुनिया में तुम्हारे है नहीं. किधर? तुम्हारा राज्य में, तुम्हारे कंट्रोल में, तुम्हारे शासन में, तुम्हारे रूल में. नो बडी इज डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी. आज हम लोग ऐसा कल्पना कर सकते क्या? इधर तो जगह जगह पर लोग ऐसा करते काम, लेकिन राजा परीक्षित के समय पर ऐसा था सिचुएशन. तो मैं कह रहा हूं, तो फिर परीक्षित को, परीक्षित ने बताया कि जहां पर भी जरूरत से ज्यादा धन दौलत जमा करके रखा है वहां पर जाओ. तो फिर कली को बहुत जगह मिल गई, क्योंकि बहुत सारा लोगों के पास में जरूरत से अधिक सोना था, स्वर्ण, गोल्ड उस समय. इसीलिए जरूरत से ज्यादा हमारे पास जब धन होता है तो हमारे ऊपर कली का प्रभाव होता है. कली का प्रभाव मतलब क्या होता है? व्हाट इज कली का प्रभाव? कली के दो प्रभाव होते हैं मेन. आपके ऊपर कली का प्रभाव है कि नहीं है कैसे हम समझेंगे? हाउ टू डायग्नोस? कली का एक प्रभाव है दंभ, यानी कि हिपोक्रेसी. आप जो है वो आप नहीं दिखाएंगे, जो आप नहीं है वो दिखाएंगे. आप दिखाएंगे कि मैं कितना दयालु हूँ, कितना अच्छा हूँ, तो सच बोलने वाला हूँ, एकदम क्लीन हार्टेड हूँ, ऐसे दिखाएंगे आप लोगों को. बाहर से दिखाएंगे, शोबाजी करेंगे, और अंदर से सब कुछ लुच्चागिरी करते रहेंगे. ये कलयुग का सबसे प्रभावशाली परिणाम है. अगर आपके अंदर ये शो बॉटलनेस है तो कली आपके ऊपर पूरा हावी है. और दूसरा है कलह, यानी झगड़ा, फाइटिंग. अगर आप बात बात पर झगड़ा करते रहते हो, मतलब आपके ऊपर कली पूरा कंट्रोल में है आपके अंदर. ये दो चीज़ कली का प्रभाव माना गया है. और अगर आप ये धन दौलत अपने पास रखते हो, जितना आपके जरूरत है उतना तो आप ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, उसका आपको परिणाम नहीं होगा। लेकिन जो एक्सेस आपके पास धन है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यू हैव टू यूज इन सर्विस टू गॉड, नहीं तो वही धन कली बनकर आपको प्रभावित करेगा। इट विल इन्फ्लुएंस योर माइंड एंड यू विल बी फोर्स टू बिकम हिपोक्रिटिकल एंड बिकम फाइटिंग इन नेचर। ये बहुत साइंटिफिक नेचर है पूरा। इसलिए हर एक व्यक्ति को, अभी आप लोगों को भी कुछ देर बाद पगार मिलेगा, नर्स बनेंगे, नौकरी मिलेगी, आपको पगार होगा, कुछ लोग ऑलरेडी पगार ले रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि पैसा अपने आप में कली है। एक्चुअली पैसा आने पर लोग दूर हो जाते हैं, है ना, भाई भाई बिछड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं, फाइट करते हैं, कोर्ट में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का खून कर देते हैं। पैसे के लोग क्या नहीं करते हैं, पैसे के लोग कुछ भी करते हैं, माता का भी खून कर देते हैं, बोलो, माता पिता का, भाई बहन का भी खून कर देते हैं फॉर मनी। इसलिए जब तक पैसा नहीं है तब तक प्रेम, भाईचारा, फ्रेंडशिप, रिलेशन, सर्विस सब चलते रहता है। एक बार पैसा आया तो आदमी सबको दूर करता है, नोबडी इज क्लोज। तो वो पैसे के प्रभाव से आपको बचना है तो आप लोगों को पैसा जो है वो भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए आपके चर्च में रूल है ना, 10% ऑफ द इनकम हैज टू बी डोनेटेड टू चर्च। क्यों? टू प्योरीफाई योर मनी, वॉट एवर मनी यू हैव, इफ यू हैव डोंट वॉन्ट टू हैव बैड इफेक्ट ऑफ योर मनी ऑन योर माइंड एंड सोल, यू मस्ट डोनेट योर मनी टू चर्च और टेम्पल और वेर एवर, जहाँ पर भगवान की सेवा होती है, भगवान के भक्तों की सेवा होती है, ऐसी जगह पर आपको हर एक व्यक्ति को डोनेट करना ही चाहिए। चाहे आप गरीब से गरीब हो, यहाँ पर मैं देखता हूँ बरसाने में, नंदगांव में, ये राजस्थान की गरीब औरतें आती हैं, एकदम गरीब औरतें, उनका एक मौसम होता है यात्रा करने का, उसमें वो सब गरीब गरीब औरतें अपने बच्चों को लेकर आती हैं। लेकिन कितनी भी गरीब औरत होगी तो चार आने, आठ आने, 10 पैसे भगवान को डालती है, खुद डालेगी और अपने बच्चे के हाथ में भी एक चार आने का दाना देगी वो, और बोले बच्चा तू भी डाल। बच्चों को भी सिखाती है कि तुम कितना भी गरीब रहेगा ना फिर भी आपको देना चाहिए, देने की आदत होनी चाहिए, लेना लेना नहीं होता है हमेशा, मनुष्य होने पर देने की आदत लगानी चाहिए तब वो मनुष्य बन जाता है, नहीं तो वो जानवर है, कल लेते रहता है बस, कुछ करता नहीं। तो अपने गरीब बालक के हाथ में भी वो 10 पैसा देगी और उसके हाथ से भी वो पेटी में डलवाएगी। दिस इज आवर कल्चर। तो ये मत आप बोलना अरे प्रभु जी आप तो डॉक्टर हो, आपका तो ज्यादा इनकम है, हम तो बेचारे गरीब हैं, हम तो हाउसकीपिंग में काम करते हैं, हम तो ऐसे हैं वैसे, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का भी पूरा नहीं होता है, अभी बहुत कर्जा बाकी है। अपने ऊपर कितना भी कर्जा होगा, कितने भी लोन होंगे, कितने भी खर्चे होंगे, फिर भी अपने इनकम का कुछ हिस्सा हमको भगवान की सेवा में देना ही है। तभी जाकर आपका जो धन जो है, 100 रुपये कमाते होंगे, 10 रुपया अगर भगवान को नहीं देंगे तो सारा 100 रुपया आपके मन के ऊपर बुरा असर करेगा, योर माइंड विल बी पोल्यूटेड। 10 रुपये भगवान को देंगे तो 90 रुपये आपके मन के ऊपर बुरा असर नहीं करेगा, योर माइंड विल रिमेन प्योर। इसलिए पाप का धन कमाना नहीं चाहिए, पाप करके धन नहीं कमाना चाहिए, और जो पुण्य करके भी अच्छा काम करके धन कमाते हैं उसके बाद भी आपको उसका कुछ परसेंटेज डोनेट करना चाहिए और बचा हुआ अपनी सेवा में लगाना चाहिए, अपने बल बच्चों के लिए, अपने लिए, बुढ़ापे के लिए, बीमारी के लिए रखना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको ये सब कहानी क्यों बताया कि हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में गाय की बड़ी रक्षा होती है। तो ये सब राजा परिषद ने क्यों किया, क्योंकि बैल जो धर्म का प्रतीक है उसके पैर कली काट रहा था। इसका मतलब कली और भी एक कार्य करता है, कली आपको हिंसा करने में मजबूर करता है, वायलेंस करने में, कली आपको व्यभिचार करने में मजबूर करता है। शादी करने के बाद भी आपका मन भटकेगा, इसके औरत के पास, उसके औरत के पास आपका मन भटकेगा, अरे मेरे बीवी से वो बहुत सुंदर है, मेरे बीवी से वो अच्छा खाना बनाती है, मेरे बीवी से वो अच्छे घर से है। लड़की सोचेगी अरे वो तो लड़के शादी किया मैं, लेकिन वो मेरा नेबर का लड़का कितना अच्छा था, उससे शादी करते कितने अच्छा होता। आपके मन से आपको प्रवृत्त करेगा कली, कली विल प्रॉम्प्ट यू टू परफॉर्म वायलेंस, टू परफॉर्म इलिसिट सेक्स, टू टेल लाइज, नॉट टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कली का प्रभाव है, इससे बचने के लिए राजा परीक्षित ने तलवार उठाई थी कली को मारने के लिए, लेकिन कली बहुत होशियार था, उसने युद्ध नहीं किया, उसने तुरंत शरणागति स्वीकार कर ली, ही लिव्ड एंड इवन टुडे ही इज लिविंग। आपको दिखना है केवल यह है कि वो आपके घर में ना रहे,
यू मस्ट सी दैट ही शुड नॉट स्टे इन योर हाउस. वो आपके घर में रहेगा तो आपके घर में झगड़े करवाएगा, आपको दाम्भिक बनाएगा, मतलब ही मेक यू हिपोक्रिटिकल, आपको पाप करने मजबूर करेगा, आपका मन फैलाएगा, भटकाएगा, आपका मन व्यभिचार करने को मजबूर करेगा, झूठ बोलने मजबूर करेगा, स्वार्थ के लिए आपको कुछ भी करने को मजबूर करेगा. वो टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम कलियुगा इफेक्ट, नंबर वन यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. भगवान का नाम जप करना चाहिए आपको, किसी भी धर्म की चलेगा. भगवान का नाम पुकारो और ये चार नियम का पालन करो. ये चार नियम का पालन करेंगे ना तो आपके घर में कली ने एंटर कर सकता है. इसलिए हम लोग अंडा मांस मछली मटन सब नहीं खाते हैं, क्योंकि हम लोग कली का असर अपने दिमाग पर नहीं चाहते हैं, दिमाग को शुद्ध करना चाहते हैं. अपने को क्या क्या शुद्ध करना है? बॉडी को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को शुद्ध करना है और आत्मा को शुद्ध करना है. कैसे करेंगे? बॉडी को शुद्ध करने के लिए हम लोग स्नान करेंगे. ब्राह्मण लोग दिन में तीन बार स्नान करते हैं, तीन बार पूजा करते हैं, कम से कम एक बार, कम से कम दो बार करना चाहिए. आपका जो घर है वो साफ रखना चाहिए, आपका जो किचन है, जो वस्तु है, सब क्लीन रखना चाहिए रोज, मतलब एटमॉस्फेयर सराउंडिंग. स्नान करने से, नदी में स्नान करने से या तालाब में स्नान करने से या घर में स्नान करने से अपने शरीर शुद्ध होता है. शुद्ध आहार करने से भी शरीर शुद्ध होता है. शुद्ध आहार वेरी इंपॉर्टेंट. मन शुद्ध कैसे होता है? एनीबडी नोस? यस, एनीबडी नोस? मन शुद्ध कैसे होता है? सेटिस्फैक्शन, यू शुड बी सेटिस्फाइड. जितना आपके पास है उतने आपको संतुष्ट होना चाहिए. शुड ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड. कितना आपको भगवान ने दिया है उतने में थैंक यू वेरी मच होना चाहिए. अरे ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मेरे पास तो टोयोटा है, ऐसा है वैसा है, उसको वन रूम गेट का हॉल है, आपके पास टू बेडरूम है, मेरे पास एक ही है. हाँ, महेश के पास में वो कैनन का कैमरा है, मेरे पास तो हॉटशॉट है. उन्होंने तो 5,000 का चश्मा पहना है, मैं तो खाली 1,500 का चश्मा पहनता हूँ. उसके पास कपड़े कितने कॉस्टली है, मेरे पास कुछ नहीं है. उसको तो 4-4 ग्लोव अच्छे अच्छे पहने हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है. हाँ, ये सबके मन में होता है ना. आप किसी फ्रेंड के घर में जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो कितना अच्छा घर है, कितना गालीचा अच्छा है, कितना सोफा अच्छा है. हमारे पास तो नहीं है. इसके पास प्लाज्मा टीवी है, हमारे पास तो सिंपल टीवी है, ओल्ड पुराना, आवाज़ भी नहीं आता उसके अंदर. लेटेस्ट टीवी नहीं है. वो बोलेंगे हमारे पास तो खाली कॉमन मोबाइल है, इसके पास तो क्या कहते हैं एंड्रॉयड है, उसको इंटरनेट भी है, उसके अंदर मोबाइल भी है, उसके अंदर 3G भी है, उसके अंदर फेसबुक भी है. कितनी कितने स्कोप है एनवी करने के लिए हमारे पास. कभी भी हम संतुष्ट होते नहीं है. वी आर नेवर हैप्पी, वी ऑलवेज वॉन्ट. कैसा ये दिल मांगे, मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए. नो सेटिस्फैक्शन. बट सेटिस्फैक्शन मन के शुद्धि के लिए आवश्यक है. और सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए तो मन को ट्रेन करना पड़ेगा. यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. अपने आप मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, कितना भी मिलने पर नहीं होगा. आप सोचो अंबानी के पास में कितना पैसा है आज, उसके 10 पीढ़ी बैठकर खा सकते हैं, इतना पैसा है उनके पास, फिर भी वो दिन रात मेहनत करते रहते. अगर आप और हम रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2 करोड़ मिल गया ना तो मैं काम करना ही बंद कर दूंगा, आराम करूंगा, अच्छी तरह झाड़ के नीचे बैठ के सो जाऊंगा. लेकिन 2 करोड़ क्या, उनके पास में 2,00,000 करोड़ रुपया है. 2,00,000 करोड़ रुपया होने पर भी वो लोग दिन रात काम करते हैं, और पैसा चाहिए उनको. क्या करेंगे? दिन में 2 बार तो खाएंगे, 3 बार तो खाएंगे, कितनी बार खाएंगे और क्या क्या खाएंगे और कितना कितना खाएंगे एक समय पर? एक समय पर कितना जगह पर सोएंगे आप? 6x3 16 कमरे का बंगला है आपका, कितना कमरे में सोएंगे आप एक टाइम पे? एक कमरे में सोएंगे. कितना बिस्तर पे सोएंगे? एक बिस्तर पे सोएंगे. आपके घर में 16 बिस्तर है पलंग, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही बिस्तर पे सो सकते हो. आपके भारत भर में 26 बंगले हैं, एक समय पर आप एक जगह पे एक ही बंगले में एक ही घर पे एक ही बिस्तर पे सो सकते हो, है ना? फिर भी और चाहिए और चाहिए. अरे इंडिया में 26 है, अमेरिका में 2 होना चाहिए, इंग्लैंड में 4 होना चाहिए, यूरोप में अभी 5 होना चाहिए, जगह जगह बंगला होना चाहिए. लेकिन कितना यूज कर सकते हैं हम लोग? पेट का साइज कितना है? कितना खाएंगे? शादी में 80 आइटम बनाएंगे तो खाएंगे कितना? कोई 80 आइटम खा सकता है क्या? लेकिन शादी में 80 आइटम भी होते हैं. 250 आइटम के शादी में भी गया हूं मैं, लेकिन खाया कितने? 4-5 आइटम खाया तो पेट फुल हो जाता है. सैंपल टेस्ट भी करेंगे तो फुल हो जाता है. इसलिए सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए तो आपको मन को ट्रेनिंग देकर सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो शरीर का बात हो गया और मन की बात हो गई। हाँ बोलना नहीं कभी यार, ये बरसाने में सुनाया था मैंने आपको, जिंदगी भर याद रखना है। और बुद्धि को शुद्ध कैसे करेंगे आप? अच्छा मन के बारे में और एक बताता हूं शुद्ध करने के लिए। एक मन का बात है सेटिस्फेक्शन, और दूसरा बात है मन मना भाव मद भक्तो। मन में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। मन के तीन काम हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड डिजायरिंग। लिखो, थिंकिंग माने विचार करना, फीलिंग माने महसूस करना। मैंने आपको बुरा बोला तो आपको बुरा लगेगा, तारीफ करूंगा तो अच्छा लगेगा, हाँ प्रेम करूंगा तो और अच्छा लगेगा। फीलिंग एंड डिजायरिंग। मन के अंदर कितनी इच्छाएं हैं बताओ, 5, 10, 15, 20, कितनी इच्छाएं? हाँ मन के अंदर अनंत इच्छा है, जितनी सागर में लहरें नहीं होती है उतनी अंदर मन की इच्छा होती है। अरे खत्म ही नहीं होती है, एक गए दूसरा तैयार होता है, एक लहर गई दूसरा लहर तैयार पीछे से उसके, कभी समाप्त नहीं होती। सागर में कभी लहर बंद हो गई क्या आज तक बताओ? अनलिमिटेड, कभी भी जाओ लहरें चलती रहती है। वैसे मन के अंदर भी अनंत इच्छाएं रहती है। उम्र बढ़ेगी तो नई नई इच्छाएं आती हैं कि मेरे पोते की शादी अच्छे लड़के से होना चाहिए। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो कुछ पोते की सवाल नहीं आता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे बोलेंगे, अभी बोलेंगे मेरी शादी अच्छे लड़के से होना चाहिए, और 70 ईयर्स में क्या बोलेंगे, मेरे पोते की शादी अच्छे लड़के से होनी चाहिए। इच्छाओं की कमी नहीं है। तो तीन चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है, विचार करना है भगवान के बारे में, महसूस करना है भगवान की भक्ति में, थिंकिंग फीलिंग एंड डिजायरिंग। विचार करना है, सोचना है, और इच्छा भी उनकी करनी है। व्हाट इज सेड इन बाइबल, दाय विल बी डन। मेरी इच्छा नहीं पूर्ण होना चाहिए, आपकी इच्छा जो मेरे बारे में है वो पूर्ण होना चाहिए। तो मन को शुद्ध हो गए ये करने से, फिर बुद्धि को शुद्ध कैसे करेंगे? एनी आइडिया हाउ टू प्योरीफाई इंटेलिजेंस? हाँ शास्त्रों का ज्ञान। भगवान ने हमको बाइबल दिया है, कुरान दिया है, टोरा दिया है, ग्रंथ साहिब दिया है, भगवद गीता दिया है, श्रीमद भागवत दिया है, वेद दिए हैं। ये सब क्या है? इसको कहते हैं वर्ड ऑफ गॉड। भगवान ने अपना मैसेज आपको दिया है, अलग 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 टाइम पे अलग अलग माध्यम से दिया हुआ है। और भगवान का मैसेज जो है वो रेगुलरली सुनना चाहिए। दैट इज वाई वी गो टू टेम्पल टू हियर लेक्चर्स, गो टू चर्च टू हियर मास। मास में क्या करते हैं आप लोग? भगवान का मैसेज पढ़ते हैं ना, बाइबल खोल के पढ़ते हैं, और कुछ फिल्म का गाना पढ़ते क्या उधर, कोई नॉवेल पढ़ते क्या उधर बाइबल चर्च में जाकर? नहीं करते। मस्जिद में क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। मंदिर में क्या करते हैं? भागवतम प्रवचन सुनते हैं, भगवद गीता सुनते हैं सुबह शाम। तो पर्पज क्या है? सुनना। और क्या सुनना है? भगवान का मैसेज। और भगवान का मैसेज सब धर्मों में एक ही है, उसका एसेंस क्या है? एक ही है, लव गॉड, भगवान से प्रेम करो, दुनियादारी का छोड़ दो और भगवान के लिए विचार करो, भगवान का प्रेम करो। तो भगवान का मैसेज सुनने से दिमाग बुद्धि शुद्ध हो जाती है। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं रोज सुबह उठकर भगवद गीता के श्लोक पढ़ता हूं और मेरे बुद्धि को स्नान कराता हूं, आई बेद माई इंटेलिजेंस बाय रीडिंग द वर्सेस फ्रॉम भगवद गीता। वैसे आप लोगों को अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने शास्त्रों को पढ़कर बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। तीसरा हो गया, चौथा बचा आत्मा। आत्मा को शुद्ध कैसे करेंगे आप? आत्मा को भगवान को जोड़ने से आत्मा शुद्ध होती है। आत्मा को जब भगवान को आप कनेक्ट करेंगे ना तो आत्मा शुद्ध होती है। तो आत्मा को भगवान से कनेक्ट कैसे करेंगे आप? अभी तक आपने क्या क्या समझा है? आपके पास कौन सा तरीका है बताओ? चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, भगवान का नाम पुकार कर आप इंस्टेंटली भगवान के साथ कनेक्शन प्राप्त कर सकते हो। और क्या माध्यम है? प्रेयर कर सकते हो और सेवा कर सकते हो। सेवा बताया ना आपको शुरुआत में, सबसे इंपॉर्टेंट सेवा भगवान की और भगवान के भक्तों की, सेंटली यानी कि संत लोगों की और पवित्र लोगों की, भक्तों की और भगवान की सेवा करने से। और क्या कर सकते हो? हाँ तपस्या करने से, भगवान के लिए नियम पालन करने से, फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर गॉड, फॉर अचीविंग गॉड, उससे आत्मा की शुद्धि होती है। और भगवान को देखने से आप मंदिर जाएंगे तो राधा रानी को देखेंगे, चर्च जाएंगे तो जीसस को देखेंगे, है ना। तो आंखों से भगवान को संपर्क कर सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं उनके बारे में, मन से विचार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, हाथ पांव से उनकी सेवा कर सकते हैं। ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। हमारे जो इंद्रिय है ना, आँख है, कान है, जिह्वा है, नाक है, हाथ है, पांव है, कंठ है, ये सबसे भगवान की सेवा करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। और आत्मा की अपवित्रता क्या है? व्हाट इज द इम्प्यूरिटी ऑफ द सोल? लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, इंटॉक्सिकेशन, एनवी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये छह चीज आत्मा के इम्प्यूरिटीज हैं। जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। और ये जीवन जो है वो हमारा आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए दिया है। केवल मनुष्य के जीवन में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा हम शुद्ध कर सकते हैं, और किसी भी जीवन में, प्राणी के जीवन में, पंछी के जीवन में, मछली के जीवन में, पेड़ के जीवन में, आप अपनी आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि शुद्ध नहीं कर सकते हैं। और अगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर आप मन, बुद्धि, आत्मा और बुद्धि और मन और शरीर को शुद्ध नहीं करते हैं तो हम मनुष्य नहीं रहते हैं, मनुष्य होकर भी प्राणी की तरह रहते हैं। द्विपद पशु, दो पैर वाले जानवर, अगर आपको इससे उठना है ऊपर तो आपको ये सब करना है। सबसे पहले हमको प्राणी के स्तर पे उठकर मनुष्य बनना है और मनुष्य के ऊपर जाकर भक्त बनना है ना। फर्स्ट यू हैव टू बिकम फ्रॉम एनिमल लेवल टू ह्यूमन लेवल, और ह्यूमन लेवल से उठकर आपको डिवोटी बनना है, तब जाकर इस जीवन के अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। और अगर इस जीवन में आकर भी ये कुछ नहीं किया आपने तो फिर दोबारा प्राणी बनेंगे, या तो मछली बनेंगे, या तो पंछी बनेंगे, या तो और कोई बनेंगे, और फिर दोबारा वो चक्र काटते रहेंगे, तकलीफ वाला, कष्ट वाला, दुख वाला। ये हमारे लिए मौका है। और आज सुबह मैं पढ़ रहा था कि ये जो बरसाना धाम है, यहाँ पर आने से बहुत भक्ति की वृद्धि होती है। यू डेवलप लॉट्स ऑफ डिवोशन बाय जस्ट कमिंग ओवर हियर, क्योंकि ये भूमि जो है ना अनुकूल है, इट्स फेवरेबल फॉर डिवोशन। जैसे भी आप रहेंगे, किसी भी अवस्था में रहेंगे, सर्वा अवस्थाम गतोपिवा, लेकिन ऐसे पवित्र क्षेत्र में आने से हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है। जन्मों जन्मों के पाप जो है अपने को पता चलता नहीं है, नष्ट हो जाते हैं। हाउ? जैसे वेन यू अंडरगो एनेस्थेसिया, डॉक्टर कट्स यू, ओपन्स यू, टेक्स ऑल द डर्ट आउट एंड थ्रोज इट अवे। डोंट यू डू यू अंडरस्टैंड दैट टाइम एनीथिंग? अंडर एनेस्थेसिया नथिंग इज अंडरस्टूड, क्या हो रहा है। When you come out of anesthesia, little pain is there, but how the dirt went out, appendix निकाल के फेंक दिया, ये गंदगी फेंक दिया, वो क्या क्या ट्यूमर निकाल के फेंक दिया। तो ये धाम में आना मतलब इट्स लाइक अ बिग सर्जरी अंडर एनेस्थेसिया। हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड। सर्जन ने बोला कि आपको ना आज जो हमारा जो ना एनेस्थेटिस्ट वो छुट्टी पर गया है, तो आज आपको सर्जरी करेंगे लेकिन वी विल नॉट गिव यू एनेस्थेसिया। तो आप क्या बोलेंगे? हाँ कोई बात नहीं, करो करो, नो प्रॉब्लम। ऐसा बोलेंगे कि आप लोग? नहीं बोलेंगे ना, बहुत तकलीफ होगी आपको। तो भगवान एक अच्छे सर्जन की तरह होते हैं, वो साथ में अपना वो है ना एनेस्थेसिया उसको भी रखते हैं। समझना नहीं चाहिए, मैं सब कुछ साफ करूंगा लेकिन आपको समझेगा भी नहीं, ऐसे दयालु है भगवान, इज लाइक अ गुड सर्जन। धाम में आने का मतलब सुप्रा मेजर सर्जरी इज बीइंग डन ऑन यू ऑन मी ऑल्सो। कितने जन्मों के पाप हमारे नष्ट हो रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आता यहाँ पर आने के बाद, बट वेन यू आर गोइंग टू गो बैक होम यू विल बी अल्ट्रा क्लीन। बट प्लीज सी दैट वेन यू बिकम अल्ट्रा क्लीन डोंट बिकम डर्टी अगेन, है ना। जैसे अभी होली हम लोग खेले थे, वो धर्म सिंह के ऊपर वो पूरा डाल दिया ना, पूरा देखा ना आपने, हाँ पूरा वो जग भर के कलर डाल दिया उसके ऊपर। तो वो घर पे गया, उसने स्नान किया और नए कपड़े पहने, नया कपड़े पहनने के बाद में दोबारा कोई आके कलर भेजने लगा तो क्या बोलेगा? अरे नहीं नहीं अभी स्नान कर गया हूँ। हम लोग होली खेलते ना होली, तो गंदा कपड़ा पहन के बाहर निकलते, पूरा कलर मारो कुछ भी करो, लेकिन एक समय पे 12 एक बजे 2 बजे हो गया तो होली समाप्त होती है. तो एवरीबडी सेज कि बस अभी हरी बोल होली एंड नाउ विल गो एंड टेक बाथ एंड टेक लंच. तो घर जाते हैं, स्नान करते हैं, पूरा कलर धो डालते हैं, पूरा कपड़ा जो कलर का है वो भी धो डालते हैं और नया कपड़ा पहन के बाहर आते हैं. और तब जाकर कोई पिचकारी लेके आया तो बोला नहीं 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 अभी तो होली हो गया हमारा, प्लीज डोंट, अभी नया कपड़ा पहना है अभी खराब मत करो उसको. एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल ऐसा है, समझो अभी कोई शराबी आदमी है, हाँ शराब की नशा करता है वो और गटर में जाके सो जाता है नशा में, एकदम गहरी नींद. लेकिन जब नशा उसका उतरता है बेचारे मैं किधर हूँ, ई बाप रे गटर में जाके उठता है और जाके स्नान करता है, अच्छा पूरा स्नान करके नया कपड़ा आके वापस गैलरी में आता है और उसी गटर को देखता है तो क्या लगता है उसको, बाप रे कितना गंदा था मैं उधर, इधर में सोया था रात भर मैं यहाँ सोया था, लोग टट्टी पेशाब करके सब कुत्ता बिल्ली भी गंदा करते हैं, वहाँ पर मैं सोया था, अरे रे 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 कैसा मैं था. लेकिन उस समय नशे में था वो. नशा उतरने के बाद में जब वो शुद्ध हो गया तो उसको बुरा लगने लगा कि मैं कितना गंदा अवस्था में था. वैसे एक बार आप अल्ट्रा क्लीन हो गए तो आपको समझेगा कि हमारा पहला अवस्था कितना गंदा था. मैं ऐसे भी करता था, वैसे भी करता था, ऐसे भी सोचता था, ये भी बात करता था, मेरे मुंह से गंदी गंदी बातें भी करता था, गंदा सोचता भी था, गंदा काम भी करता था, अभी मैं नहीं करूँगा. तो एक बार हम धाम में आ गए तो हमको प्रण लेना चाहिए, वी हैव टू प्रॉमिस द लॉर्ड कि आई विल नॉट डू अगेन डर्टी थिंग्स इन माई लाइफ. तब जाकर आपका यहाँ पर आना अच्छा हो जाएगा. नहीं तो आप स्नान करोगे और दोबारा गटर में जाओगे तो क्या फायदा है उसका. हाथी कैसा होता है, नदी में स्नान करता है फिर जाकर मट्टी में गोल गोल घूमता है. उसको कहते हैं कुंजर स्नान, हाथी जैसा स्नान. तो हमको वैसा स्नान नहीं करना चाहिए. तो हमको अभी लास्ट थिंग आई विल टेल यू कि धाम में आने के बाद में हृदय की शुद्धि होती है, जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं. तो वापस जाकर हमको भक्ति का जीवन अपनाना चाहिए और सारे पाप कर्म को छोड़ देना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए. मेक योर लाइफ प्योर, योर लाइफ, योर हार्ट, योर इंटेलिजेंस, योर माइंड, योर बॉडी एंड योर लाइफ अराउंड यू शुड बी प्योर. इतना प्योर होना चाहिए कि आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आएगा ना उसको भी प्योर बनने की इच्छा होनी चाहिए आपको देखकर कि यू आर सो प्योर, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू. ऐसा आपको देख के लोगों को लगना चाहिए, इतनी प्योरिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि आपको देखकर लोगों को लगना चाहिए कि मुझे ऐसा बनना चाहिए. यू हैव टू बिकम एग्जाम्पल ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योरिटी ऑफ पर्पस. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सबका बहुत बहुत धन्यवाद है. हरे कृष्णा.